ओम शांति। आज हमारी इस मधुबन के सुबह के सत्र में हमारे बीच में डॉक्टर मंजुनाथ हैं। डॉक्टर मंजुनाथ कंसल्टेंट फिजिशियन नेफ्रोलॉजिस्ट और गुलबर्गा में चिरायु हॉस्पिटल है वहाँ के मेडिकल डायरेक्टर हैं। बहुत लंबा समय से डॉक्टर साहब हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं देने आते रहते हैं। हर दो दो महीने में, हर एक एक महीने में बीच बीच में आते हैं। यहाँ पे जो भी किडनी के पेशेंट्स हैं, डायलिसिस के पेशेंट्स हैं और भी किडनी रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके विषय में कंसल्टेशन देते हैं, एक्सपर्ट एडवाइस देते हैं। कभी कभी लेक्चर्स होते हैं उनके स्टूडेंट्स के लिए, DNB स्टूडेंट्स के लिए। तो और हमने देखा कि हम जब गुलबर्गा गए थे, बहुत निर्माणचित, बहुत नम्रचित और अनन्य बच्चे हैं बाबा के और अथक सेवाधारी है। तो आज वो हमारे बीच में है और एक बहुत सुंदर विषय है, इमोशनल इम्प्यूरिटीज, भावनात्मक अशुद्धियाँ। तो कौन कौन सी भावनात्मक अशुद्धियाँ है, कौन कौन सी इम्प्यूरिटीज है, कैसी वो इम्प्यूरिटीज है और इस ब्राह्मण जीवन में कैसे वो आ जाती है और कैसे उन इम्प्यूरिटीज से हम मुक्त हो, इस विषय में वो अपने विचार हमारे सम्मुख रखेंगे। और हम देखते हैं कि यहाँ जब आते हैं तो हमको ऐसे लगता नहीं कि ये व्यक्ति इतनी ऊंची पदवी या पोस्ट पर होंगे, इतनी उनके स्वभाव में नम्रता है। और जैसे कहा कि बाबा के अनन्य बच्चे हैं, अनन्य भाव से, अनन्य रीति से बाबा के ज्ञान में तीव्रता से चल रहे हैं और पुरुषार्थ में बहुत लगन है, बहुत इंटरेस्ट है। क्लासेस सुनते हैं, अलग अलग पुरुषार्थ की विधियां अपनाते हैं और उनका अपना बहुत अच्छा सुंदर मनन चिंतन है। तो आज हमारे बीच में डॉक्टर साहब अपने विचार रखेंगे और हमारे पुरुषार्थ को हम तीव्र कैसे करें उसकी कुछ युक्तियां बताएंगे। डॉक्टर मंजुनाथ ऑन इमोशनल इम्प्यूरिटीज।
ओम शांति। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर सचिन भाई का आभारी हूँ जो उन्होंने मुझे एक मौका दिया है सेल्फ प्रोग्रेस ग्रुप में। ये मेरा पहला डिस्कशन है। मैं इसको वर्ड डिस्कशन इसलिए कहूँगा कि मैं डिस्क्लेमर डालना चाहता हूँ कि पहले जब सचिन भाई ने मुझे टॉपिक दिया इमोशनल इम्प्यूरिटीज, मैंने तो तुरंत हाँ कह दी, पर जब बाद में इसमें मैं चिंतन करने लगा, अरे यार मैंने हाँ क्यों बोला तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मैं तो अभी ज्ञान मार्ग में चल रहा हूँ, पूरा योगी बनाऊं कि नहीं बनाऊं, तो खुद पे मैं शक करने लगा, यहीं पर इमोशनल इम्प्यूरिटी आ गई। फिर अगर मुझे ज्ञान नहीं है तो मैं बात कैसे करूँगा। फिर मुझे बाद में लगा नहीं, अगर मुझे एक ज्ञान मार्ग पे जाना है, मुझे एक ज्ञान मार्ग में डट के रहना है, तो अगर मुझे बोलना है तो मुझे और ज्ञान की खोज करना है। तो तब मैंने ठान लिया कि मुझे इस पे बात करना है। हालांकि सचिन भाई से मैंने मदद लिया कि पहले कि मुझे कुछ इनपुट्स दो, गाइड दो, तो हमेशा रिप्लाई आता था अभी टाइम है तो आखिर तक मेरे एक लौकिक, अभी गुलबर्गा में मेरे प्रोफेशन में मैं थोड़ा व्यस्त रहता हूँ, तो फिर कई तीन दिनों से इस चिंतन करते रहा और कुछ बात मैं भी करूँगा। तो कुछ इस डिस्कशन में मेरे कुछ पॉइंट्स सब्जेक्टिव, काफ़ी सब्जेक्टिव पॉइंट्स हो सकते हैं, तो इसमें कहीं भी मेरे इंटरप्रिटेशन में कोई डिविएशन है तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक इमोशनल इम्प्यूरिटीज मैं एक 5 हेडिंग्स में डिवाइड करता हूँ। सबसे पहले इमोशनल इम्प्यूरिटीज का डेफिनेशन क्या है, फिर सेकंड इसका आधार क्या है, बेसिस है, क्यों आते हैं इमोशनल इम्प्यूरिटीज, फिर तीसरा हम कुछ उदाहरण देंगे इमोशनल इम्प्यूरिटीज, कैसे हमारे रोज के जीवन में इमोशनल इम्प्यूरिटीज हम खुद पैदा करते हैं, फिर चौथा कि इस इमोशनल इम्प्यूरिटीज का परिणाम क्या होता है, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस, और आखिर में इस इमोशनल इम्प्यूरिटीज को हम कैसे मुक्त हो जाए, कि हाउ टू गेट रिड ऑफ दिस इमोशनल इम्प्यूरिटीज। तो सबसे पहले इमोशनल इम्प्यूरिटी का डेफिनेशन हम लेते हैं। जब हम इमोशंस के बारे में बात करते हैं, भावना के बारे में बात करते हैं, इमोशंस मतलब क्या, इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ योर इनर फीलिंग, हम क्या महसूस करते हैं हम उसको हम भाव में व्यक्त करते हैं। तो वो है इमोशंस। तो वो इमोशंस आपके चेहरे के द्वारा दिखाई दे या आपके कर्मों द्वारा दिखाई देंगे। वैसे तो आजकल तो हमको मोबाइल में भी व्हाट्सएप में भी इमोटिकॉन्स द्वारा हमको इमोशंस दिखाई देते हैं, कोई ऐसे करेगा कोई ऐसे करेगा। तो ये हो गए इमोशंस। इम्प्यूरिटीज मतलब क्या? इम्प्यूरिटीज मतलब समथिंग विच इज एन अनडिजायर्ड सब्सटेंस, जो डिजायर्ड नहीं है पर वो आ जाता है, तो उसको हम इम्प्यूरिटीज बोलते हैं, मिलावट। तो अभी इम्प्यूरिटीज में फिजिकल इम्प्यूरिटीज होंगे, जैसे कि अभी पानी में दूध में पानी मिल गया है, या कोई गोल्ड में कुछ दूसरे मेटल्स डाले गए हैं, तो ये फिजिकल इम्प्यूरिटीज हो गए। आज अडल्ट्रेटेड फूड मिलता है तो वो भी फिजिकल इम्प्यूरिटीज हो जाता है। पर कहीं ना कहीं ये फिजिकल इम्प्यूरिटीज के पीछे उसका रूट कॉज फिर इमोशनल इम्प्यूरिटी ही होता है। जब दूध में पानी मिलावट किया जाता है उसके पीछे इमोशनल इम्प्यूरिटी है। तो इसको पूरा हम अगर एसिमुलेट करते हैं तो इमोशनल इम्प्यूरिटी का डेफिनेशन इज इट इज अ डिफ्रॉड। हम कुछ फ्रॉड कर रहे हैं अपने डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए। तो अगर हम सबकॉन्शियस माइंड में अगर बात करने चाहते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारे संस्कारों में सबकॉन्शियस माइंड में हिडन इम्प्यूरिटीज है। तो जब संस्कारों में विकार आ जाते हैं तो ये इमोशनल इम्प्यूरिटी बन जाता है। तो संस्कार और विकार की जब मिलावट हो जाती है तो ये इमोशनल इम्प्यूरिटी बन जाता है। तो ये व्हाट इज इमोशनल इम्प्यूरिटी। तो ये तीसरा हम देखते हैं कि ये इमोशनल इम्प्यूरिटी का बेसिस क्या है, होता क्यों है। तो इसका जो रूट कॉज है इट इज डिजायर, इट्स काम। तो इसमें भगवद गीता में अच्छा वर्णन किया गया है, काम यश क्रोध यश रजोगुण सम्मुद्ध भाव। फिर रजोगुण सम्मुद्ध भाव मतलब क्या होता है कि रजोगुण मतलब द मोड ऑफ पैशन, सम्मुद्ध भाव जिससे ये उत्पन्न होता है, द बॉर्न आउट ऑफ दिस पैशन। तो उसमें ये बताया गया है कि काम यश क्रोध गश सॉरी काम यश क्रोध यश रजोगुण सम्मुद्ध भाव फिर महापापम वेद्य सॉरी विद्यहीनम वैरिणम। तो विद्य ही वैरिणम मतलब वैरिणम इज दी सो ये जो डिजायर है दिस इज दी ग्रेटेस्ट एनिमी, वैरिणम मतलब ग्रेटेस्ट एनिमी। आज बाबा ने हमें कई मुरली में भी ये पांच विकारों के बारे में बताया है। तो एक मुरली में बाबा ने ऑर्डर दिया है, तो सबसे बड़ा विकार कौन? काम डिजायर। उसके बाद काम के बाद आता है क्रोध, फिर क्रोध के बाद लोभ, लोभ के बाद मोह, मोह के बाद अहंकार। तो ये ऑर्डर दिया है। तो यही भगवद गीता में भी इसका एक वही सेकंड चैप्टर फोर्थ चैप्टर में एक नेक्स्ट अध्याय में बताया गया है कि जब ये काम फुलफिल होता है, डिजायर इज फुलफिल्ड, तो ये कभी वो जो सेंस ऑफ हैप्पीनेस जो परसीव करता है तो वो इटसेल्फ ग्रेटेस्ट एनिमी बन जाता है, तो वो लोभ बन जाता है। फिर लोभ होने के बाद वो और एक्वायर करता है, तो और एक्वायर करने के बाद उसके साथ उसका मोह बन जाता है। फिर वो और एक्वायर करता है, वो मोह के सामने फिर उसको अहंकार डेवलप होता है। तो ये डिजायर जो है रूट कॉज जो है, जब ये हालांकि ये फुलफिल भी हो सेटिस्फाई भी हो, तो ये जब सेटिस्फाई हो जाता है तो इसको लोभ में बदल जाता है, ये लोभ मोह में बदल जाता है, और जब सारे एक्विजिशंस आ जाते हैं तो मन में अहंकार हो जाता है। अगर ये काम डिजायर फुलफिल नहीं होता है तो क्या होता है? तो क्रोध आ जाता है या जेलेसी स्टार्ट हो जाती है। तो इसी को हम इमोशनल इम्प्यूरिटीज कहते हैं। तो हमने देखा कि अभी ये डेफिनेशन क्या है, इसका आधार बेसिस क्या है। तो घूम फिर के हम कहीं पे आते हैं कि इसके बीच में जो रूट कॉज है, जो मूल वजह है, वो है काम। फिर हम देखते हैं कि इमोशनल इम्प्यूरिटीज के एग्जाम्पल्स क्या है हमारे रोज के जीवन में। आज मैं एक लौकिक जीवन में अक्सर ये मेरा डिशुम डिशुम चलते रहता है इमोशनल इम्प्यूरिटीज के साथ। तो सबसे पहले ये हमारे इमोशनल इम्प्योरिटीज संबंध में हो सकते हैं, रिलेशनशिप में हो सकते हैं, प्रोफेशन में हो सकते हैं, कहीं सोशल वर्कर्स के साथ होता है, हमारे पॉलिटिशियंस तो वो है ही है ही। तो सबसे पहले मैं रोज के मेरे प्रोफेशन में मैं खुद उदाहरण देता हूँ, ये मेरे सब्जेक्टिव ओपिनियंस है। आज मैं एक डॉक्टर हूँ, आज जब मेरे पास पेशेंट आता है तो उसको कुछ, अब मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, आप समझ पाएंगे इसको, कि एक मेरा पेशेंट है जिसका किडनी फेल हुआ है, उसको कुछ डायलिसिस की जरूरत है। तो बैठ के मैं इस पेशेंट को समझाता हूँ कि अरे हाँ बाबा तुझे ये, आपको ये प्रॉब्लम है, आपको डायलिसिस की जरूरत है। पर पेशेंट को शुरुआत में वो डिनाइल फेज में रहते हैं, वो भी एक इम्प्योरिटी में बाद में बात करूंगा, तो एक्सेप्ट नहीं करता है, तो डिनाई करता है। अभी जब इमोशनल इम्प्योरिटी हमारे डॉक्टर के मन में तब उत्पन्न होती है जब यार मैं इसको समझा रहा हूं ये समझ ही नहीं रहा है, तो ये क्यों ऐसा हमको लगता है। तो कहीं ना कहीं फिर मैं अपने आप को पूछता हूं कि मैं क्यों डिसअपॉइंटेड हूं, वो मना कर रहा है तो मैं क्यों डिसअपॉइंट हो जाऊं, क्या ये मेरे पेशेंट के लिए एम्पैथी है या मेरा कुछ और मकसद है। तो कहीं ना कहीं हिडन इम्प्योरिटी है कि कहीं ये पेशेंट अभी डायलिसिस मना कर रहा है तो ये एडमिट नहीं होगा, ये एडमिट नहीं होगा तो मुझे फीस कैसे मिलेगा, कहीं ना कहीं एक छोटा सा इम्प्योरिटी होता है। तो यही मैं तुलना मेरे गवर्नमेंट डॉक्टर के सेटअप में, तो एक प्राइवेट प्रैक्टिस करता हूँ, तो मैं कहीं ना कहीं हमारे गवर्नमेंट डॉक्टर के साथ भी तुलना करने की कोशिश कर कंपेयर करता हूँ। अगर यही गवर्नमेंट डॉक्टर जब उसकी प्रैक्टिस में अगर ये सेम पेशेंट आता है, भले ही दोनों का एडवाइस सेम है, तो एडवाइस में कोई बायस नहीं है, एडवाइस में कोई इम्प्योरिटी नहीं है, पर उसके पीछे थॉट प्रोसेस। तो जब गवर्नमेंट डॉक्टर जब पेशेंट को देख लेता है तो वो बोलता है कि हाँ बाबा तुमको डायलिसिस की जरूरत है, तो पेशेंट फिर भी एक्सेप्ट नहीं करता है। पर जब द गवर्नमेंट डॉक्टर क्या कर, चलो ये नहीं मान रहे, चलो नेक्स्ट पेशेंट, सो ही इज डिसइंटरेस्टेड, वो अपना एक एफर्ट्स नहीं डालेगा कि उसको कन्विंस करने में, क्योंकि उसको उससे कुछ नहीं मिलने वाला है। तो ये दिस इज ये सेल्फ चेकिंग। तो ये एक मेरा एक इमोशनल इम्प्योरिटी, मैं खुद में एक्सेप्ट करता हूँ, ये खुद में कन्फेस करता हूँ कि मैं जब मैं मेरे प्राइवेट प्रैक्टिस में है तो मैं क्यों इतना समझाता हूँ, मैं देख लेता हूँ कि वो पेशेंट कन्विंस हो जाए, कहीं ना कहीं मेरा कोई बेनिफिट है, कहीं ना कहीं मेरा कोई ग्रीड है जो है। हम लोग डॉक्टर्स लोग अक्सर आप लोग कुछ सुनते हैं कि आजकल जो हमारे फील्ड में अनएथिकल प्रैक्टिस वगैरह होते हैं तो इसके पीछे फिर इमोशनल इम्प्योरिटीज का ही कारण होता है, लोभ होता है, मोह होता है। पर आप तो मीडिया में ये थोड़ा एग्जैगरेट होता है पर उतना नहीं है। तो मैं कभी देखता हूँ अभी हमारे कुछ पेशेंट्स के ट्रीटमेंट में कुछ नए नए ट्रीटमेंट आते हैं, अभी कुछ कन्वेंशनल ट्रीटमेंट होते हैं और कुछ नए ट्रीटमेंट आते हैं, वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। अभी रास्ते तो दो ही होते हैं, एक कन्वेंशनल ट्रीटमेंट या एक नया जो लेटेस्ट आया जो बहुत एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है। हालांकि दोनों में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होगा, कुछ सम एडवांटेजेस एंड ऑल, पर जब डॉक्टर एडवाइस करता है तो वो एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट की तरफ उसका बायस चले जाता है, और जब कोई अफोर्डेबल पेशेंट आ गया तो खत्म, तो वो देखेगा कि उसको ये कन्वेंशनल, ये जो मोस्ट लेटेस्ट एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट ही एडवाइस करेगा, उसको कन्वेंशनल ट्रीटमेंट का ऑप्शन देगा ही नहीं। जबकि अगर वो प्यूरिटी है तो वो डॉक्टर दोनों ऑप्शन देगा, पर हम दोनों ऑप्शन नहीं देते हैं, हम सिर्फ यही ऑप्शन देते हैं। तो कहीं ना कहीं वापिस ये इम्प्योरिटी है। हम लोग कई बार, हम डॉक्टर्स अपने आप को हम रैशनलाइज करते हैं, हम लोग कुछ रॉबिनहुड का एग्जाम्पल देने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को रैशनलाइज करते हैं, हम अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं कि नहीं अगर वो अफोर्डेबल है, अगर नहीं मैं इतने सारे पुअर पेशेंट्स को हेल्प करूंगा तो मैं इससे ज्यादा नहीं खींचूंगा तो कैसे करूंगा। शायद कुछ हद तक सही है, पर कहीं ना कहीं जब ये आदत बन जाती है, हैबिट बन जाते हैं, फिर हम वही इमोशनल इम्प्योरिटी करते ही जाते हम पहचान भी नहीं पाते कि वो हम कर रहे हैं। तो ये था हमारे प्रोफेशन में हम एग्जांपल्स देखते हैं। फिर हमारे प्रोफेशन में कंपटीशन होता है, जेलेसी होता है। अभी मैं देखता हूं कि आजकल हम व्हाट्सएप मीडियम में कुछ डॉक्टर्स अच्छे अच्छे सर्जरीज करते हैं, कुछ रेयर सर्जरीज करते हैं, उन्होंने ऐसे किया वैसे किया है, तो व्हाट्सएप में डाला जाता है डन लाइक दिस दिस लाइक दिस करके। तो हमारे पास भी सर्जन से तो खुशी तो रहती है। तो एक सर्जन अपना व्हाट्सएप पे उसको कुछ डाल देता है, वो उसको खुश रहना है कि अरे मैंने ये सर्जरी किया है, ही शुड बी हैविंग दैट सेंस ऑफ प्राइड एंड अचीवमेंट। पर वो मैटर वहीं स्टॉप नहीं होता है, वो सब कुछ व्हाट्सएप पे डालता है। पर वो जब डालता है तभी व्हाट्सएप में कुछ ग्रुप मेंबर्स उसको वो इमोटिकॉन्स डाल देते हैं, ऐसे ऐसे वो सब कुछ, कुछ लोग नहीं डालते हैं। तो एक तरफ कुछ लोगों का एक जेलेसी है, और दूसरी तरफ ये जो बंदा जो डॉक्टर जो खुश होना चाहिए कि मैंने ये सर्जरी किया है, आज वो नाखुश है कि उसको कुछ एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल रहा है। तो वो अपने खुशी में ये इमोशनल इम्प्यूरिटी ला रहा है, वो अपने खुशी में एक एक्सपेक्टेशन ला रहा है कि कोई दूसरे डॉक्टर एक्नॉलेज बोले अरे वाह 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 करके, पर वो एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल रहा है। तो वो एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता है तो वो अपनी खुशी को सेलिब्रेट करने के बजाय वो नाखुश है। तो ये इमोशनल इम्प्यूरिटी उसके खुशी में अड़ा हुआ जाता है। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हमारे डे टू डे प्रोफेशन में कैसे लोभ, बिजनेस में भी होता है। कोई आप ज्वेलर के पास गए तो, या आप कोई मोबाइल शॉप में गए तो आपको क्या जरूरत है वो नहीं बताएगा, जो सबसे एक्सपेंसिव मोबाइल है उसी के बारे में आपको बताएगा। तो उसके पीछे उसका एक इमोशनल इम्प्यूरिटी ग्रीड छुपा हुआ है। तो हम रिलेशनशिप संबंधों के बारे में बात करते हैं। संबंधों में भी आज ऐसी हो रहा है, मैं देखता हूं अक्सर, मेरे फैमिलीज में भी देखता हूं, मेरे लौकिक फैमिलीज में देखता हूं, आजकल पेरेंट्स अपने बच्चों के पढ़ाई में इतने इन्वॉल्व रहते हैं, इतने डिस्टर्ब रहते हैं, बच्चों को बैठ के पढ़ाना है, उसको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में डालना है, डांस क्लास में डालना है, तबला क्लास में डालना है, सब कुछ कराना है, वो करना है ये करना है। तो ठीक है कि आपके बच्चों में ये मुझे गुण आना है, ये है उनके स्किल आने हैं आपके, वो हद तक ठीक है। पर कहीं ना कहीं एक उनको एक मटेरियलिस्टिक फेम के एक्सपेक्टेशन में वो खो जाते हैं। तो वो अपने बच्चों में ये स्किल आना तो वो उम्मीद रखते ही हैं, पर कहीं ना कहीं उनमें वो एक इमोशनल इम्प्यूरिटी होता है कि लोग बोले, पड़ोसी बोले अरे वाह मिसेस खन्ना का बेटा बड़ा अव्वल आ गया, उसको एग्जाम में पास होता है, वो तबला भी सीखता है, बैडमिंटन भी खेलता है, सब कुछ करता है। तो कहीं ना कहीं वो पेरेंट्स के मन में वो एक एक्सपेक्टेशन है, वो एक मटेरियलिस्टिक फेम का एक्सपेक्टेशन है जो अपने बच्चों को वो ओवर बर्डन करता है। फिर होता है कुछ, अभी जैसे हम अभी हम सुने कि कंफ्यूजन, अभी मेरे घर में थोड़ा थोड़ा ज्ञान, अभी मेरे पेरेंट्स को, मेरे लौकिक पेरेंट्स को, मेरे युगल को तो थोड़ा थोड़ा बहुत है, पर कहीं ना कहीं वो थोड़े भक्ति मार्ग में उलझे रहते हैं हमेशा। हाल ही परसों में एक वट सावित्री का पूजा था, तो मेरे युगल ने बोला कि आज ना तुमको सारा काम तुमको ही करना है, बच्चों को रेडी करना है, उनका डब्बा पैक करना है, सब तुमको ही करना है। मैंने बोला नहीं मुझे हॉस्पिटल थोड़ा जल्दी जाना है। नहीं 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 आपको करना है वो सब। मैं बोला ठीक है क्या है। नहीं नहीं आज वट सावित्री का पूजा है, मुझे पूजा करने जाना है। हाँ हाँ तो मैंने पूछा क्या करने वाले हो, तो बोला नहीं नहीं तुम्हारी लंबी उम्र की वो सब कुछ मुझे प्रे करना है। मैं बोला चलो ठीक है। तो हाँ तो इसलिए तुमको, मैं तुम्हारे लिए ये कर रही हूं ना, तुमको तुमको ये करना है। मैंने बोला अच्छा डील है। तो हम लोग कुछ मार्ग में तो हमारा जो ये इम्प्यूरिटीज आ जाते हैं, ये एक्चुअली हमारे ये जो अवेयरनेस को है जो ब्लर कर देता है। देन मेरे प्रोफेशन में मेरे एम्प्लॉयज के साथ मैं अक्सर देता हूं, मेरे पास एक एम्प्लॉय है कहीं पे, कहीं ना कहीं जैसे वो गुस्सा पकड़ बैठते हैं। एक मेरा एम्प्लॉय को उसका अप्रेजल होता है, हर साल हम अप्रेजल सैलरी हाइक वगैरह करते हैं, तो उसको उसके एक्सपेक्टेशंस कुछ ज्यादा थे, हमने तो इतना अप्रेजल, तो फिर बाद में मैंने उसको समझाया कि ये कंपनी एक अफोर्ड में, जैसे मेरा जो हॉस्पिटल इट्स अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो हम इतना अफोर्ड, हम इतना फिक्स करते हैं, इसके हिसाब से ये ठीक है। तो बिल्कुल खुश नहीं था, वो हमेशा अपने मन में लेकर चलते रहा। बाद में उसका अगला साल अप्रेजल आ गया, तो फिर हमने उसको फिर से अप्रेजल दिया, तो ये बंदा बोला नहीं मुझे हाइक नहीं चाहिए, मैं इससे खुश हूं। तो थोड़े हम लोग सरप्राइज हो गए, फिर मैंने बोला क्यों तुम ये हाइक क्यों नहीं ले रहे हो? नहीं नहीं सर, तभी मैं हाइक डिजर्व किया था, तो तभी नहीं दिया तो मैं अभी क्यों लूं? तो कहीं ना कहीं वो एक एंगर, और एंगर कभी कभी अहंकार में बदल जाता है, जहां वो अपने आप को सेल्फ हार्म कर रहा है, वो अपने आप को ब्लीड कर रहा है फाइनेंशियली। तो ये अहंकार जब हम या एंगर लेके मन में बैठते हैं, अगर हम उससे बाहर नहीं आ जाते हैं, तो फिर वो हमारे डे टू डे एक्टिविटीज में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एक आपको छोटी सी जेन स्टोरी बताता हूं, ये आपने शायद सुना होगा, फिर भी मैं बता देता हूं, मुझे कैसे भी और एक 10 मिनट खींचना है। तो एक दो मॉन्क्स जाते रहते हैं, तो दे कम अक्रॉस अ रिवर, तो नदी आ जाती है, तो वहां पे एक सुंदर महिला होती है, तो उसको भी रिवर क्रॉस करना होता है। तो महिला उन मॉन्क्स को हेल्प पूछती कि मुझे रिवर क्रॉस करने नहीं आएगा, आप कोई मुझे हेल्प करे। तो एक मॉन्क बोलता है नहीं नहीं हम कैसे करेंगे, हम स्पिरिचुअल लाइफ में हैं, हम तो महिला को देखते भी नहीं है, टच भी नहीं करेंगे। जो दूसरा मॉन्क कुछ ज्यादा सोचता नहीं है, सीधा वो महिला को अपने कंधे पे उठा लेता है और रिवर क्रॉस कर लेता है, और वो महिला को वहां पे दूसरे तट पे ड्रॉप कर देता है। ये दूसरा मॉन्क जो है अंदर ही अंदर उसको गुस्सा आ रहा है, वो मॉन्क को बोल रहा है ये तूने कैसे किया, हमारे गुरु ने क्या क्या सिखाया है कि हमको किसी महिला को छूना भी नहीं है, तुमने ये कैसे किया? तो वो मॉन्क बोलता है मैंने तो महिला को वहीं पे छोड़ा है, तुम तो अभी भी उसको उठा के ले चल रहे हो। तो हमको ये कैरी नहीं करना है, वी हैव टू जस्ट गेट रिड ऑफ इट। आज मैं सोशल वर्कर्स में भी देखता हूं, मेरे कॉलोनी में एक यंग लीडर है, कुछ पॉलिटिकल लीडर है, वो कुछ अपना करियर बनाना चाहता है, तो वो काफी कुछ ब्लड बैंक कैंप्स वो ये ऑर्गेनाइज कर रहा है, फिर बाद में परसों उसने कुछ ग्रीन प्लांटेशन ड्राइव, एनवायरमेंट ड्राइव वगैरह सब कुछ किया उस दिन, तो मुझे भी वो बुलाया था तो हम भी करे, फिर आया, फिर शाम में मैं आया देखा उसको मायूस था। मैं बोला क्या हो गया इतना, अरे तुमने इतना सारे झाड़ लगाए एंड यू शुड बी सो हैप्पी, यू हैव डन सच अ वंडरफुल वर्क। फिर तो बोलता नहीं यार वो मीडिया वालों ने सिर्फ इतना ही न्यूज डाला है, उन्होंने कुछ फोटो नहीं डाला है। तो कहीं ना कहीं फिर वो जो जब वो ग्रीन प्लांटेशन ड्राइव वो एनवायरमेंट के नाम पे डाल रहा है, उसको एक मुकुट डाल रहा है, पर उसके उसका इरादा कुछ और है, उसका कोई इमोशनल इंप्यूरिटी उसके अंदर है। तो जो एक दिस थिंग, तो ये काम, तो मैंने ये कुछ ग्रीड के बताया, काम फिजिकल लस्ट भी होता है। आज मेरे ऑर्गेनाइजेशन में मुझे अक्सर कुछ सिचुएशन देखने को मिलते हैं जहां पे कुछ फिजिकल एडवांसेस हो जाते हैं, कई इंस्टेंसेस हुए हैं जहां पे मेरे प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में जब एचआर मैनेजर बार बार हर फीमेल एम्प्लॉय को बुलाता है, उसको रिवॉर्ड देता है, उसको बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ करता है, वो करता है, ठीक है वो रिवॉर्ड तो कर रहा है, पर कहीं ना कहीं उसका कुछ हिडन एजेंडा होता है। तो ये हम इमोशनल इम्प्योरिटीज के बारे में बता रहे थे, तो एक दो तीन एग्जांपल्स कुछ अच्छी चीजों के बारे में भी बात करेंगे। मैं एक बार एक बेकरी में गया था शाम के वक्त ब्रेड लाने, तो दरअसल वो जब मैं बेकरी में गया तो बेकरी का ओनर एक मेरा पेशेंट ही निकला, तो फिर मैंने बोला चलो मुझे ब्रेड लेना है। उसने बोला नहीं सर ये ब्रेड कल का है, मत लीजिए आपको, ये वहां पे बाजू में एक और एक बेकरी आपको वहां पे मिलेगा। आई वॉज हैप्पी कि ये इतना हॉनेस्ट है और बोल रहा है कि नहीं ये ब्रेड अच्छा नहीं है. मुझे तो नहीं समझेगा अभी ब्रेड पे तो रैप्ड रहता है तो मुझे फ्रेश है कैसे, मुझे तो नहीं समझेगा तो मैं तो उठा के लेके आऊंगा. तो मैंने बोला थैंक यू. तो बोला और उसने दूसरा बेकरी का भी एड्रेस बताया. तो वो मैंने बोला ये कितने अच्छे इरादे हैं. फिर बाद में मैंने उसको पूछा कि तुमने इसलिए बताया कि मैं तुमको पहचानता हूं. फिर वो थोड़ी देर चुप रहा. नहीं 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 मैं दूसरे लोगों को भी मैं ऐसी बोलता हूं कि अगर जो ब्रेड कल का है तो मैं नहीं बेचता हूं. तो अगली बार मैं क्या करूंगा, मैं उसी से लूंगा. तो ये इस तरह के जो उनकी बर्ताव आती है तो हमको पता चल जाता है कि उनमें वो प्यूरिटी कितना है. एक रिसेंट एग्जाम्पल, आपने एक न्यूजीलैंड प्राइम मिनिस्टर एक महिला है, मुझे नाम याद नहीं है कुछ है. तो अभी ये मीडिया भी कैसे कुछ अननेसेसरी चीजें कैसे थेपना चाहती है. तो न्यूजीलैंड प्राइम मिनिस्टर, उसने अभी हाल ही में उसका डिलीवरी हुआ तो शी गिव बर्थ टू अ डॉटर. तो मीडिया लोग सारे हेडलाइंस डालते रहे कि द सेकेंड हेड ऑफ द कंट्री टू बिकम अ पेरेंट वाइल इन ऑफिस, मतलब सेकेंड ओनली है. तो पहली बेनजीर भुट्टो थी तो ये सेकेंड. तो वो हेडलाइंस में ही वही आ रहा है. एंड दरअसल एक मीडिया वालों ने उनको इंटरव्यू भी किया कि आपको कैसे लग रहा है कि आप प्राइम मिनिस्टर हैं और वर्क में रह के आपने वर्क को संभालते हुए आपने ये मदरहुड अपनाया है ऐसे ऐसे. उनका इतना सुंदर रिप्लाई था. तो उनमें वो अहंकार नहीं था कि मैं हेड ऑफ द कंट्री हूं फिर भी ये. तो उसने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें बहुत सारे वर्किंग मदर्स ऐसे ही करते हैं. तो कुछ चीजें हमको ऐसे भी सीखने हैं जहां पे उनकी जो सिंप्लिसिटी होती है, उनकी जो दे आर सो हम्बल. तो ये पॉइंट्स भी हमको सीखने रहते. तो ये मैंने कुछ उदाहरण दिए हमारे डे टू डे एग्जांपल्स में कैसे हमारे इमोशनल इम्प्यूरिटीज. तो इमोशनल इम्प्यूरिटीज के पीछे एक डिजायर है. तो कहते हैं ना कहीं पे निगाह है कहीं पे निशाना. तो हम एक मुकुट पहनते हैं हमारे इमोशंस को, पर उसके पीछे कुछ इरादा कुछ और ही है. तो फिर फाइनली हम अभी ये इमोशनल इम्प्यूरिटीज से हम कैसे, हाउ टू गेट रिड ऑफ दिस. तो सबसे पहले इसका डायग्नोसिस होना चाहिए. सबसे पहले हमको पहचानना है कि हमारे इसमें इमोशनल इम्प्यूरिटीज आ रहे हैं. जैसे मैंने एक बताया कि एक हमारे HR मैनेजर कुछ फिजिकल एडवांसेस कुछ एम्प्लॉयज की तरफ कर रहे थे. तो वो पता चल जाता है कुछ चीजों में. आप जब गोल्ड खरीदने जाते हैं तो भी आपको कुछ लोगों को नॉलेज रहता है कुछ लोगों को नहीं रहता है. तो इसका हल क्या है, सोल्यूशन क्या है. तो भगवद गीता में चैप्टर 4, चैप्टर 12 एंड चैप्टर 16 ये सारे उसी के रिलेटेड है. चैप्टर 4 इज अबाउट ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, मतलब ज्ञान उपासना. चैप्टर 12 इज अबाउट डिवोशन, मतलब हम कैसे हम परमात्मा को समर्पित हो जाते हैं. एंड चैप्टर, जब आपको एक पहले ज्ञान मिलेगा, जब हम ज्ञान मार्ग में चलेंगे, जब हमको ज्ञान मिलेगा तो फिर हम अपना योग लगा सकते हैं परमात्मा के साथ. फिर एक बार हम परमात्मा के साथ योग लगाए हैं तो फिर हमारा सेल्फ रियलाइजेशन होता है. सेल्फ रियलाइजेशन होने के बाद फिर हमको हमारे में क्या देवी गुण है क्या असुर गुण है ये पता चल जाएंगे, मतलब डिवाइन एंड डेमोनिक प्रॉपर्टीज हमारे इसमें क्या है तब हमको पता चलेंगे. तो अगर हमको ये डायग्नोस करना है तो हमको पहले ये ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज को अपनाना है. स्पिरिचुअल नॉलेज को अपनाने के बाद हमको परमात्मा को समर्पित होना है. तो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज में भी हमारी श्रद्धि बनाए रखना है. तो भगवद गीता में लिखा है कि अगर हम नॉलेज में श्रद्धा नहीं रखते हैं, अभी 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 जस्ट हमने सुना कि कितने कितने रिलीजन्स के अपने अपने स्क्रिप्चर्स हैं, तो सारा कंफ्यूजन होता है, अरे मैं किसको बिलीव करूं. पर आज जब हम, जो बाबा ने हमको एक नॉलेज दिया है, अगर हम उसमें अरे वो रिलीजन ये कह रहा है ये रिलीजन ये कह रहा है, तो अगर हम वो श्रद्धा नहीं रखेंगे तो फिर हम डगमगाएंगे। तो भगवत गीता में दरअसल लिखा है अग्नेश्च श्रद्धादानश्च संशय आत्मा विनाशति नायम परो लोकस्थ क्या बोलते हैं कि न सुखम संशय आत्मा ही। मतलब कि अगर आप इस स्क्रिप्चर्स में अगर आप श्रद्धा नहीं रखेंगे, अगर ये आप स्क्रिप्चर्स में आप कुछ कंफ्यूज रहेंगे तो आपको ये लोक में भी आपको सुख नहीं मिलेगा और परलोक में भी नहीं मिलेगा या अगले जन्म में भी आपको ये सुख नहीं मिलेगा। तो हमको हमारे इसमें श्रद्धा में हमको कंटिन्यूस उसमें कंटिन्यू रहना है। फिर अभी जो लौकिक जीवन में अपना काम निभाते हैं तो उनको अपना बैलेंस, हमने कल के मुरली में सुना है कि हमको बैलेंस मेंटेन करना है। अक्सर मेरे साथ ऐसे होता है कि जब मैं बहुत सारी चीजें कम समय में कोशिश करना चाहता हूं, कम समय में खत्म करने की कोशिश करता हूं तो मैं हिल जाता हूं। अभी मुझे बहुत सारे एक पेशेंट्स को बहुत देर मैंने काउंसलिंग किया, वो किया, सब कुछ किया, फिर बाद में नेक्स्ट दो पेशेंट आ गए, अगर मैं फिर उसके बीच में थोड़ा मैं ब्रेक ना लूं और अवेयरनेस नहीं रखा मैंने, अभी जैसे आज की मुरली में हमने सुना है कि हमको स्मृति में रहना है, अवेयर रहना है, ठीक है, बाबा बाबा करके केवल मुख से नहीं बोलना है बट हमको सिमरन में लाना है। तो अगर हम नहीं करते हैं तो दूसरा तीसरा पेशेंट आ गया, वो कुछ दो तीन क्वेश्चन ज्यादा पूछ लिया तो फिर मैं सटक जाता हूं, तो फिर वाट लग जाती है। तो ये कहीं ना कहीं बीच बीच में जब एक लंबा आप काम करते हैं तो बीच में आपको ब्रेक लेना है, तो आपको अपने आप को वो स्मृति दिलाना है कि मैं अवेयर करना है कि मैं डगमगाऊंगा नहीं करके। तो यही इसी तरह हम अपने आप को इमोशनल इम्प्यूरिटी से हम बचा सकते हैं। तो बेसिकली इट्स अबाउट बैलेंस, आपको ये डिसाइड करना है कि मैं इतना करूंगा इतना नहीं करूंगा। तो यू हैव टू बी वेरी फर्म कि आपको एक बैलेंस करना है। तो आज की मुरली में बाबा ने लिखा है कि आप सिर्फ सूत्र में नहीं रखना है, तो बाबा एक उक्ति बनाते हैं कि आपको चार्ट रखना है। आज बाबा ने युक्ति दिया है कि आपको चार्ट बनाना है। तो एट द एंड ऑफ द डे फिर मैंने सीखा है अभी ये थोड़े ज्ञान में आने के बाद कि मैं अभी थिंग्स टू डू तो मैं प्लान कर लेता हूं, फिर एट द एंड ऑफ द डे मैं चेक करता हूं कि थिंग्स टू बी तो मैंने क्या क्या कैसे रहा, मैं कब कब डगमाया, कब कब मैंने थोड़ा मेरा टेम्पर लूज किया, कब कब मैंने मेरे मन में कुछ इम्प्यूरिटीज आई हैं। तो ये सेल्फ चेकिंग हमारी हमेशा होती रहेंगे। तो ये जब हमारी सेल्फ चेकिंग होते रहेंगे तो सिंपल से मैं आज की मुरली फिर से रिपीट करता हूं। ठीक है, तो उससे पहले मैंने आपको अभी जस्ट मैं परिणाम बताना भूल गया कि ये इमोशनल इम्प्यूरिटीज का परिणाम, एक तो आप खुद हमेशा रेस्टलेस रहते हो और इसका परिणाम रिलेशनशिप में डाइवोर्स हो जाता है, फ्रेंडशिप्स टूट जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में डिवीजन होता है, आज पॉलिटिकल पार्टीज में एक पार्टी से दूसरे पार्टी में भाग जाते हैं, फिर ये अभी पॉलिटिकल पार्टीज के भी उनको पॉपुलिस्ट मेजर्स रहते हैं, कुछ पॉपुलिस्ट मेजर्स अनाउंस करते हैं, तो वो पॉपुलिस्ट मेजर्स भी जब अनाउंस करते हैं तो उनका मकसद पब्लिक को बेनिफिट देना नहीं होता है, एक पब्लिक को इम्प्रेस करना होता है कि ताकि उनको वोट मिले। तो ये सब इतना ये जैसे भी कहता है कि अभी कहीं भी पीस नहीं है, तो और यही पीस अभी नेशन टू नेशन, तो अभी इतने कुछ वायलेंस होता है, टेररिस्ट अटैक होते हैं, तो कहीं ना कहीं एक नेशन दूसरे नेशन में फिर वो जो अहंकार है, फिर वो जो गुस्सा है वो बढ़ने लगता है, और कहीं ना कहीं ये है कि कहीं ना कहीं ये थर्ड वर्ल्ड वॉर होने का चांस है। तो इसके पीछे पूरा इमोशनल इम्प्यूरिटीज है और इसी इमोशनल इम्प्यूरिटीज को आज हमको बाबा ने मार्ग बताया है कि इससे कैसे हमको मुक्त होना है। ओम शांति।